मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में बातें करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पिछले सप्ताह जो मैंने प्री एग्जामिनेशन को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखी थी उन सबको आप सबने बहुत पसंद किया है, शिरोधार्य किया है और स्वीकार किया है कि इस पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो डेफिनेटली हम लोग ऐसा करेंगे और सच पूछिए तो यह आप सबके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा यदि मैं बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातें आप लोगों के सामने रख सका। तो उस पर हम लोग आगे बातें करेंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण खबरें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वे आपके सामने रखना चाहूंगा। तूफान जवाद, इसके बारे में आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज में भी आप सबने सुना होगा, लेकिन थैंक्स गॉड कि यह तूफान कमजोर पड़ गया, बहुत ज्यादा इसकी वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ा और इसे हमारे ईस्ट कोस्ट पर आना था, पूर्वी तट पर आना था। जब हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो वही है आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा और वेस्ट बंगाल का हिस्सा आ जाता है। यह जो नाम दिया है यह सऊदी अरब ने दिया है जिसका अर्थ होता है उदार या दयालु, लेकिन तूफान किस तरह से उदार या दयालु हो सकता है अब हम नहीं जानते, लेकिन नाम दिया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 2-3 साल पहले के प्री एग्जामिनेशन में तूफानों के नाम पर प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बीच में तूफानों के नाम पर अब प्रश्न नहीं आ रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, मेंस में तो 2014-15 में इस तरह का भी पूछ लिया गया था कि तूफानों के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं, लेकिन खैर इसका मतलब यह नहीं कि आपको जानना नहीं चाहिए। किसी भी बात पर हम रिस्क नहीं ले सकते, सिंपल सी चीज होती है, थोड़ा सा पढ़िए, दिमाग में दर्ज कीजिए और भूल जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दिमाग आपकी मदद करने को सामने हाजिर होगा। तो दोस्तों ये था तूफान जवाब। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, बकायदे पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया, लोकसभा राज्यसभा से कुछ ही मिनट में पारित हो गया और कुछ मिनट में पारित होना ही था क्योंकि विपक्ष तो लगातार इसको रद्द करने की मांग कर ही रहा था। जब सरकार ने कहा कि हाँ हम इसे रद्द करेंगे तो अब वो रद्द हो गया है, तो पार्लियामेंट में एक्ट ला करके उन्हें वापस ले लिया गया है, आप यूं कह लीजिए। दोस्तों इस बीच में एक खबर यह भी रही कि एक जो कंपनी है पेप्सिको इंक, लेज बनाती है, आप लोगों ने खाया होगा आलू के चिप्स, लेज नाम से बड़े फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है ये चिप्स, तो इसने जो हमारे गुजरात के कुछ किसान थे उनके ऊपर बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत केस दायर किया था। दरअसल इसने एक अलग किस्म का आलू तैयार किया है, उस आलू की खासियत यह होती है कि उस आलू में नमी कम होती है, क्योंकि आलू में मॉइस्चर कम होता है तो उसे बहुत अच्छे चिप्स वगैरह स्नैक्स वगैरह बनते हैं। यह इसने डेवलप किया था या जो भी है, इसका कॉपीराइट इसके पास था। क्योंकि यह संपदा कानून से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए ताकि आप इसे अपडेट कर सकें। तो गुजरात के कुछ किसानों ने जब वो आलू बोया तो कंपनी ने उन पर केस कर दिया कि भैया इस पर हमारा कॉपीराइट है, आप कैसे इसको बो सकते हैं, हमसे खरीदिए बीज और फिर आप आलू बो सकते हैं। तो इसको लेकर के बहस चली और अब जो है बकायदे जो हमारा इसको देखने वाला जो प्राधिकरण है, अलग अलग तरह के प्राधिकरण है ना, अधिकरण प्राधिकरण जो हम कहते हैं, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, इसने बकायदे जो पेप्सिको इंक का दावा था उसे खारिज कर दिया है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, इस पर आपका अधिकार नहीं होगा। और ये जो आलू की जो किस्म है इसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, किस्म है FL-2027। मैं रिपीट कर रहा हूं FL-2027, ये आलू की एक किस्म है। तो ये जो बौद्धिक संपदा कानून है ये आपका अपडेट हो जाएगा। इस बीच में कुछ डेटा भी आए हैं, नीति आयोग ने एक डेटा जारी किया है, ये खासकर बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम ये जानते थे कि हमारे देश की इतनी प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है, इन इन राज्यों की ये स्थिति है, दरअसल हम केवल इसी के बारे में बात करते थे, लेकिन नीति आयोग ने अब इसे थोड़ा सा ज्यादा यथार्थवादी बनाने की कोशिश की है और इसीलिए इसे नाम भी दिया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी कहने का क्या मतलब है, इसका संबंध केवल पेट भरने से नहीं, पहले तो यही होता था ना, आपने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि साहब एक दिन की कमाई इतनी हो शहर की या गांव की, अगर इससे कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो इसका संबंध सीधे सीधे पेट भरने से हो गया, और उसमें जो आय भी रखी गई है वो उससे मुश्किल से ही पेट भर पाएगा। इसको मल्टी डाइमेंशनल बना दिया गया है, और तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, तो इसमें भोजन वगैरह आ जाएगा। हालांकि ये तीन मेन पॉइंट है, लेकिन इसके अंतर्गत 12 बिंदु आते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे थोड़ा सा जान लें। इसमें बकायदे है पोषण, यानी कि भोजन कैसा है, शिशु एवं किशोर की मृत्यु दर क्या है, गर्भावस्था के दौरान जो माँ है उसकी देखभाल कैसी हो रही है, स्कूल में शिक्षा की अवधि कितनी है, स्कूल में उपस्थिति कितनी है, रसोई ईंधन का किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, स्वच्छता की क्या स्थिति है, पेयजल है कि नहीं है, बिजली की क्या स्थिति है, घर कैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी कैसी है, बैंक खाता उसका है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके तहत अनफॉर्चुनेटली जो बिहार है वो टॉप पर है, और बिहार की 51.91% पॉपुलेशन, मोटे तौर पर 52% पॉपुलेशन गरीब है आप कहेंगे। दूसरा स्थान झारखंड का है 42.16%, और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है 37.79%। चौथे पर मध्य प्रदेश है 36.65%। तो ऊपर के तीन हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अभी मैंने जो प्रतिशत आपको बताए हैं, आप यदि इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आपको अपने राज्य का एग्जैक्ट डेटा मालूम हो। दूसरे के सामान्य तौर पर बस आप सीक्वेंस जान लीजिए। लेकिन इसके विपरीत अब आप देखिए कि केरल की 1% जनता भी गरीब नहीं है। उसका परसेंट आया है 0.71%। कोई गरीब नहीं है, 0.71% क्या होता है। दूसरा स्थान गोवा का है और तीसरा स्थान सिक्किम का है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा व्यावहारिक डेटा है, थोड़ी सी बातें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बकायदे भूखमरी और कुपोषण ये सारे विषय हैं। गरीबी तो है ही, पॉवर्टी है। तो लेटेस्ट क्या है, बातें चल रही हैं, कौन राज्य किस स्थिति पर आ रहा है, इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, रुद्र। रुद्र, ये रुद्र क्या है? ये हमारा पहला देसी सर्वर है, पहला देसी सर्वर। और ये खासकर हम जो सुपर कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस दिशा में यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इस रुद्र को जो डेवलप किया है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्री एग्जामिनेशन में, तो उसे डेवलप करने वाली एजेंसी है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे बोलचाल की भाषा में हम सभी कहते हैं सीडैक। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने विकसित किया है, और बकायदे एक मिशन के तहत किया है, और वो मिशन है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो रुद्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार जब डेटा संरक्षण की बात आती है तो हमेशा ये प्रश्न उठाया जाता है कि जितने भी ये विदेशी कंपनियां हैं, ये हमारा डेटा तो लेती हैं, और डेटा लेने के बाद इसे विदेशों में इनके सर्वर्स लगे हुए हैं तो वहां ये संरक्षित करती हैं, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। लेकिन यदि हम अपना ही सर्वर बना लेंगे तो फिर डेटा का जो कलेक्शन है वो हम अपना यहां ही रख सकेंगे, तो इससे जो निजता है वो काफी कुछ सुरक्षित हो सकेगी। दोस्तों, नेक्स्ट है एक शब्द आपने सुना होगा, मेटावर्स। मेटावर्स खासकर अक्टूबर की बात है, शायद अक्टूबर के महीने में जो हमारे जकरवर्ग साहब हैं, जकरवर्ग साहब ने अपना जो फेसबुक है उसका नाम बदलने की घोषणा की थी, और कहा था कि अब हम इसका नाम मेटा रखने जा रहे हैं, मेटा। और इसके बाद से जो मेटावर्स शब्द है ये बहुत चर्चा में आ गया। इस शब्द का जो पहला इस्तेमाल हुआ था एक साइंस फिक्शन, मतलब आप कह लीजिए कि विज्ञान से संबंधित जो उपन्यास था, जिसको लिखा था नील स्टीफेंसन ने 1992 में, स्नो क्रैश। भले ही आपको ये बात ध्यान में नहीं हो, मैं यूं ही बता रहा, स्नो क्रैश, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये मेटावर्स क्या है, बस इसे थोड़ा सा देख लीजिए। बेसिकली इसका अर्थ है कि आमतौर पर एक ऐसी जगह, आभासी जगह है, जहां लोग बकायदे जाएंगे, अपना सोशल होने की बात कहेंगे कि वो सोशल हैं, खेलेंगे और काम करने के लिए वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए अभी तो हम क्या है, चौपाल में इकट्ठे होते हैं, चौक पे इकट्ठे होते हैं, प्रोग्राम की जगह पर इकट्ठे होते हैं, हम फिजिकली जाते हैं तभी वहां हम इकट्ठे हो पाते हैं। यहां फिजिकली आपको जाने की जगह नहीं होगी, आप आभासी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। यह है मेटावर्स। क्योंकि कभी कभी इस तरह के शब्द के बारे में पूछ लिया जाता है तो मुझे लगा कि आपको जानकारी दी जानी चाहिए। दोस्तों इस बीच में नागालैंड की में जो घटना घटित हुई है, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अनफॉर्चुनेटली वहां जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो असम राइफल्स, उस सीमा में असम राइफल्स हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनको कुछ उग्रवादी गतिविधियों के बारे में पता लगी, उनके प्लान के बारे में पता लगा, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली और जब एक गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी को उन्होंने रुकने के लिए कहा, जैसा कि अखबारों में दिया हुआ है, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, इनको शक हुआ और इन्होंने गोली चला दी और उसमें लगभग 13 लोग मारे गए। और दुर्भाग्य से ये जो 13 लोग थे सामान्य नागरिक थे, मजदूर वगैरह काम करके लौट रहे थे खदानों से। इसको लेकर के बहुत जबरदस्त अनरेस्ट है। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स, उसने कहा है कि गलती हुई, लेकिन उनको चूंकि गलत सूचना मिली इस वजह से ये हुई। जो भी है अभी अब देखिए इसके बारे में क्या होता है। सरकार ने एक जो विशेष जांच दल होता है जिसे हम SIT कहते हैं, उसके गठन की घोषणा कर दी है कि वो इस घटना की जांच करे, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है। दोस्तों अंत में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आ गए हैं और भारत और रूस के बीच में बकायदे एक शिखर बैठक होती है, वार्षिक शिखर बैठक होती है, भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक, और इसमें हमारे जो रणनीतिक मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो विचार विमर्श करने वाली एक अपेक्स बॉडी है। तो वहां से राष्ट्रपति जी आ गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद देखिए कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि आप देखिए कि जब भी भारत की विदेश नीति की बात होती है तो अमेरिका रूस और फिर जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं तो वो तो लगभग अब सुनने में नहीं आता, उतना ज्यादा सक्रिय नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होगी, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ तथ्य हैं जो मैं आप लोगों के सामने, जब ये पूरी वार्ता कंप्लीट हो जाएगी तब जो बातें निकल करके आएंगी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस घटना पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको उपलब्ध की जा रही हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल को होनी है, उसके लिए पूर्वी दीवान जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पूर्वी आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, इशरत परवेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, पंकज त्रिपाठी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, अरुणा कुमारी बेगूसराय बिहार से, रुपेंद्र कुमार डॉक्टर अनुराग शुक्ला कानपुर से, अल्पना कुमारी बिहार से, आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और अनंत चौहान, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मित्रों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।